उपन्यास का खंड संख्या 9 अंशुमाला। रत्नप्रभा का विचार था कि दारा को अपनाकर उसने कीचड़ में से कांच पाया, परंतु दारा तो मड़ी निकली। संध्या समय समाज में रत्नप्रभा की प्रधान शिष्या मुक्तावली मयूर लय पर नृत्य कर रही थी। दारा तांबुल आधार लिए स्वामिनी की सेवा में उपस्थित थी। दृष्टि मुक्तावली की ओर लगाए ही रत्नप्रभा ने तांबुल के लिए दारा की और हाथ बढ़ाया। हाथ में तांबुल न पाने से उसने देखा दासी अत्यंत तन्मय होकर मुक्तावली की गति की ओर दृष्टि लगाए थी। दृष्टि की अत्यंत एकाग्रता के कारण उसकी भुकटी पलकों पर झुक आई थी। रत्नप्रभा विनोद में मुक्तावली को भूलकर दारा की एकाग्रता देखती रही। सहसा दारा के मुख से निकला आह भंग और तांबुल आधार उसके हाथों से गिर पड़ा। मुक्तावली थम गई। पात्र की झंझनाहट से दारा को चेत हुआ। अत्यंत संकुचित और त्रस्त होकर उसने स्वामिनी और मुक्तावली दोनों से ही क्षमा याचना की। रत्नप्रभा ने उस शिष्टाचार की उपेक्षा कर दारा को मयूरी नृत्य शुद्ध रूप में पूर्ण करने का आदेश दिया। दारा ने अत्यंत विनय से असमर्थ और अज्ञान प्रकट कर अभद्रता के लिए पुनः क्षमा मांगी। रत्नप्रभा ने आग्रह किया, नहीं दारा, नित्य कला से तुम परिचित हो, यह निसंदेह है। सहसा स्मरण होने से उसने कहा, आहा, उस दिन नदी पर तुमने कहा था तुम कलाविद हो, नर्तकी बनोगी। स्वामिनी के हट से विवश होकर दारा संकोच और मन की विरक्ति से अपृथक सी अवस्था में नृत्य करने के लिए प्रस्तुत हुई। वीणा और मृदंग बजने लगे। विवश दारा के पदों ने लय पर गति आरंभ की। वायुवृद्ध वादक रोहित नवीन नर्तकी के पदाक्षेप से तुरंत उसकी क्षमता भाप गया। उसने लय को द्रुत और विलंबित अनेक गतियों में बजाया। दारा कहीं न उखड़ी। कुछ समय नृत्य करने के पश्चात दारा उसे आत्मविस्मित हो गई। अपने प्राणों में लय भरकर वह इतनी सूक्ष्मता और वेग से नाची कि वृद्ध रोहित की उंगुलियाँ पिछड़ने लगी। उसके मस्तक से स्वेद की धारा बह निकली। दर्शक चित्रित मूर्तियों की भांति अवाक रह गए। रत्नप्रभा चिबुक पर अंगुली रखे विस्मय विजड़ित सी बैठी थी। नृत्य समाप्त कर दारा ने स्वामिनी के सम्मुख प्रणाम किया। विस्मय का सम्मोहन समाप्त होने पर रत्नप्रभा अपने आसन से उठी। अपने कंठ की मणिमाला उतार कर दारा को पहनाकर उसने आलिंगन में लेकर बोली, सखी, सांगल, मगध और तक्षशिला के अतिरिक्त कला की ऐसी पूर्णता कहीं संभव नहीं। सखी, यह गुण गुरु की विशेष कृपा और देवी सरस्वती के वरदान बिना संभव नहीं। सखी, तुम में मेरी गुरु देवी मल्लिका का अंश है। सत्य कहो, यह रत्न कहाँ पाया? विनय से सिर झुकाकर दारा ने कृतज्ञता से गदगद स्वर से उत्तर दिया, सरस्वती की वरद पुत्री उन्हीं देवी को नमस्कार है। रत्नप्रभा दारा के प्रति दयालु थी। उसका गुण और रहस्य जानकर वह उस पर आदर से अनुरक्त हो गई। रत्नप्रभा सोचती रही और उसने दारा का नाम रख दिया अंशुमाला। नाम बदलने के साथ पुनः दिव्या का संसार बदल गया। द्रव्य और विलास के प्रभाव में, संगीत और नृत्य के भंवर में वह हंस सावक की भांति अविक्षिप्त निर्लिप्त तैरने लगी। उसके दुख के दुर्भेग्य कवच के भीतर उस विलास और विनोद के भंवर के जल की एक बूंद न गई। अंशुमाला की मुस्कान और लाश्य केवल कला का कर्तव्य मात्र था। समाज से पृथक होते ही वह निस्संग और तटस्थ हो जाती, जैसे जल से बाहर निकल आने पर हंस सावक अपने पर झाड़कर जल की बूंद से रहित हो जाता है। उसका मन दारुण और विभत्स स्मृतियों के दुर्भेग्य आवरण से वेष्टित था। उसके मन में साकुल का वियोग व्याप्त था। रसिक समाज अंशुमाला की मोहक लाश्य और चमत्कार पूर्ण कला पर निछावर होकर विभोर हो उठता। अमूल्य उपहार की भेंट रत्नप्रभा के आसन के सम्मुख एकत्र हो जाती। अंशुमाला वह कुछ न देखती। उसकी अंतर्गत दृष्टि के सम्मुख साकुल के क्षुधार्थ भोले नेत्र उज्ज्वल हो उठते। साकुल के वियोग में उसकी पीड़ा की पुकार श्रोताओं के हृदय में प्रवेश कर करुण रस के गीतों के श्लेष को अनुभूति स्थल सत्य का उग्र रूप दे देती। नित्य में उसकी आत्मरति अदृष्टिपूर्ण थी। रत्नप्रभा का प्रसाद केवल मथुरा नगरी में ही नहीं, संपूर्ण सूरसेन प्रदेश और उससे अधिक दूर के प्रदेशों के लिए भी कला का तीर्थ था। अब उसकी ख्याति मगध, कौरव, कठ और मद्र तक पहुंच गई। संध्या समय उसके समाज में स्थान के लिए रसकों में विवाद होने लगता। जिस समारोह में अंशुमाला कला का प्रदर्शन करती, मार्गों की रक्षा और व्यवस्था के लिए राजपुरुषों की उपस्थिति आवश्यक हो जाती। अंशुमाला की लोकप्रियता के कारण रत्नप्रभा के यहाँ पहले से दूना धन आने लगा। रत्नप्रभा और मुक्तावली के संगीत नृत्य पर जहाँ पुष्पमालाएँ और रजत मुद्राएँ की भेंट आती थी, अब स्वर्ण मुद्राएँ, रत्न और मणिमालाएँ बरसने लगी। नाम था रत्नप्रभा का, वास्तविकता थी अंशुमाला। रत्नप्रभा के प्रसाद में अंशुमाला की आकर्षण शक्ति का दूसरा परिणाम भी सम्मुख आया। श्रेष्ठी युवक, सामंतगण और राजपुरुष पुष्पमालाएँ लेकर आते, यथेष्ट द्रव्य रत्नप्रभा के सम्मुख अर्पण कर अंशुमाला को जल विहार अथवा कानन विहार के लिए साथ ले जाना चाहते। रत्नप्रभा की कृपा और अनुग्रह के प्रार्थी अब उसके प्रसाद में आकर अंशुमाला के लिए व्याकुल रहते। बिना चिंता और प्रयत्न के बहते जल आने वाले द्रव्य के लिए रत्नप्रभा को कुछ आकर्षण न रहा। अपने आकर्षण की शक्ति खो बैठने से एक निरस्ता और निरस्ता सा उसे सब ओर अनुभव होने लगा। रत्नप्रभा स्वयं पूजा की प्रतिमा न रह गई रत्नप्रभा स्वयं पूजा की प्रतिमा न रहकर नई आई प्रतिमा की संरक्षिका, स्वामिनी और अधिष्ठात्री बन गई। अंशुमाला की स्तुति और अनुराग की भेंट में आने वाला सब द्रव्य उसी का था। आत्मसात हो मुस्कान कर वह मन को समझाती, मेरे जीवन में आकर्षण का प्रयोजन और फल है ही क्या? द्रव्य ही तो मेरा प्रयोजन है, फिर न्यूनता क्या, अभाव क्या है? परंतु मन न मानता, न्यूनता की अनुभूति कहती। धन का उपयोग क्या है? धन का उपयोग भोग में है, वह उसे किस प्रकार भोगे? सुंदर वस्त्र, आभूषण, भव्य भवन सब कुछ है, परंतु वे क्या संतोष देते हैं? वे जीवन का लक्ष्य नहीं, केवल उपकरण मात्र हैं, उन्हें देखता ही कौन है? ऐसे ही जैसे पिजरा स्वर्ण का रहने पर भी महत्व कुछ पर्णे की सारिका का ही होता है। वह सोचने लगती, 18 वर्ष पूर्व जब वह अपनी शिक्षा मल्लिका के प्रसाद में पूर्ण कर मथुरापुरी लौटी थी, जन समाज उसकी ओर झूम पड़ा था। उस समय कौमुदी ने उससे इतनी ईर्ष्या की थी कि परंतु कौमुदी की ईर्ष्या किस बात के लिए थी? उसने ऐसा क्या पाया था जो उसका ही होकर रह गया? यही है वेश्या के जीवन का विद्युत, यही है उसकी सफलता, समृद्धि और आत्मनिर्भरता। वेश्या देती है अपना अस्तित्व और पाती है केवल द्रव्य, परंतु पाराश्रित कुलवधु अपने समर्पण के मूल्य में दूसरे पुरुष को पाती है, किसी दूसरे पर अधिकार पाती है। वेश्या का जीवन मोटी बत्ती और राल मिले तेल से पूर्ण दीपक की अनुकूल वायु में अति प्रज्वलित लव की भांति या उल्कापात की भांति क्षणिक तीव्र प्रकाश करके शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। कुलवधु का जीवन मध्यम प्रकाश से चीरकाल तक टिमटिमाते दीपक की भांति है। ममता भरी शरण के हाथ प्रतिकूल परिस्थितियां के झंझावत में उसकी रक्षा करते हैं। वह अपने निर्वाण से पूर्व अपने अस्तित्व से दूसरे दीप जलाकर अपना प्रकाश उनमें देख पाती है। स्वयं उसका निर्वाण हो जाने पर उसका प्रकाश बना रहता है। ऐसी परंपरा ही मनुष्य की अमरता है। मारिस के शब्द उसे प्राय स्मरण हो आते। मूर्तिकार चारवाक मारिस के अनेक कथन प्राय रत्नप्रभा को स्मरण हो आते और उन शब्दों से संबद्ध स्मृतियाँ भी। पहले पहल 3 वर्ष वह युवक सिर पर असमय में पके केस लिए दक्षिणापथ से सागर लौटता हुआ उसके यहाँ आया था। वह समाज में उपस्थित हुआ। उसके रूप और वेश ने रत्नप्रभा का ध्यान आकर्षित नहीं किया। समाज के अनंतर में वह प्रसाद में उपस्थित रहा। रत्नप्रभा के विश्राम के समय उसने साक्षात्कार के लिए अनुरोध किया। रत्नप्रभा की अस्वीकृति से उत्साहित होकर उसने दासी द्वारा उत्तर दिया, हाँ, नर्तकी का व्यवहार उचित ही है, उसकी संगीत से संगति की इच्छा मैं करता हूँ, परंतु इस संतोष का मूल्य द्रव्य से नहीं चुका सकता, परंतु द्रव्य के अतिरिक्त संसार में अन्य भी हैं। दासी द्वारा पाए मारिस के इस संवाद से हतप्रत होकर रत्नप्रभा ने अनिच्छा से उसे साक्षात्कार का अवसर दिया। मारिस के व्यवहार में कुछ ऐसा था कि रत्नप्रभा उसकी उपेक्षा न कर सकी। वह कई पक्ष तक उसका अतिथि बना रहा। उसका अद्भुत प्रलाप आरंभ में रत्नप्रभा के लिए केवल कौतूहल का हेतु था, परंतु कुछ ही समय में वह उस प्रलाप पर गंभीरता से मनन करने लगी। वह और अधिक गंभीर हो गई। रत्नप्रभा के हृदय में संतोष न था, परंतु विश्वास और आशा थी। अपने व्यवसाय से संचित द्रव्य का यथेष्ट भाग वह यज्ञ बलि में अर्पण करती थी। उसे विश्वास था पूर्व जन्म के कर्म फल से उसे इस जन्म में केवल ख्याति और धन पाया, परंतु जीवन की पूर्णता से वह वंचित रही। इस जन्म के पूर्ण से वह इस पूर्णता को परलोक और पुनर्जन्म में पाएगी।